हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तद्रादरहन परः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द धामो धर्माधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र का संकट। अत्यंत ही सुंदर रीति से शुकदेव गोस्वामी उस विख्यात पर्वत के विषय में बता रहे हैं जो क्षीर समुद्र के सेंटर में चारों तरफ से क्षीर सागर गिरा हुआ है और सेंटर में वो त्रिकूट नाम का पर्वत है जिसकी तीन चोटियां हैं, तीन जिसके शिखर हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन तीन बहुत ही बड़े शिखर हैं, जो सोने का है चांदी का है और लोहे का है, और इसके अलावा अन्य छोटे छोटे शिखर हैं जो कि रत्न धातु विचित्रता है, बहुत सारे सुंदर ढंग से रत्न धातु के बने हुए हैं, और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर लताएं, वृक्ष, झाड़ियां और झरने वहां पर हैं। और सेंटर में है क्योंकि चारों ओर से क्षीर सागर है, तो क्षीर सागर से जब लहरें आती हैं तो ऐसा लगता है मानो सचावनिच्यमानंग्री समन्तात्पय उर में भी, ऐसा लगता है कि क्षीर समुद्र इस पर्वत की चरण पखार रहा हो, क्योंकि दूध की लहरें आती हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि उनके चरण, पर्वत की चरण जो है वो दूध की लहरों से क्षीर सागर धो रहा है। और उसके अतिरिक्त बताया कि इसके आसपास में बहुत सुंदर सुंदर हरी मरका की मणियां हैं, बहुत ही सुंदर हरे कलर की मणियां हैं जो कि करोति श्यामलां भूमि, जो कि पूरी भूमि को श्यामल बना रहे हैं। उसके बाद बताया कि उस पर्वत पर कौन आते हैं, सिद्ध आते हैं, गंधर्व आते हैं, देवता, अप्सर, नाग, किन्नर सब आते हैं, बस मनुष्यों का नाम नहीं दिया कि मनुष्य नहीं आते वहां पर, सिर्फ जो सिद्ध लोग, जो बहुत पुण्य लोगों के जीव है उनके लिए है ये। और मानो श्वेत द्वीप, अभी जो ये क्षीर सागर है वो श्वेत द्वीप है जहाँ पे भगवान क्षीरो दीक्षाई विष्णु के स्वरूप में विश्राम, ये भगवान का घर है वास्तव में। जो हम जो वर्णन सुन रहे हैं ना क्षीर सागर के तट का, वो भगवान का घर है, यहीं पर तो रहते हैं भगवान। तो इस द्वीप के क्षीर सागर के मध्य में जो त्रिकूट पर्वत है वहां पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्च लोकों के वासी वहां पर आते हैं, और वो क्या करते हैं, यत्र संगीत सन्नादर नदत गुहम मर्षया, वहां पर आते हैं, जोर जोर से संगीत गाते हैं, देवताओं के लोक में सदैव कीर्तन गान होता रहता है, बहुत बहुत कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, मृदंग बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। तो कैसा लगता है, क्योंकि अभी वो वन है तो वन में पशु भी हैं, हरा या हशेर भी हैं, तो जब ये देवता लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के साजों को और म्यूजिक्स को यूज करके मृदंग, करताल आदि से जो आवाज निकलता है, तो ये आवाज अभी गर्जनन्ति हरयः श्लाघिनः परशंखयः, वो समझते हैं शायद शेर हैं, तो वो भी अपने श्लाघने का मतलब होता है अपने अहंकार में मत होकर वो भी गरजने लगते हैं, इससे वो जो वन है उसकी सुंदरता और भी बढ़ती है। वास्तव में वन की सुंदरता तो जंगली पशुओं से ही होती है ना, जंगल में यदि जंगली पशु ना हो तो फिर वो इतना सुशोभित नहीं रहता। तो आगे बता रहे हैं श्लोक नंबर 7 में, नानारण्य पशु व्रात संकुल द्रोण्य अलंकृत चित्र दुमा सुरोध्याना कलकंठ विहंगमः, नानारण्य पशु व्रात संकुल द्रोण अलंकृत चित्र द्रुमा सरोध्याना कलकंठ विहंगमः। नाना रण्य पशु व्रात, मतलब बहुत प्रकार के पशु हैं वहां पर, रण्य मतलब जंगली पशु हैं वहां पर जो वन के पशु होते हैं, और संकलु लद्रोण्य लंकृत, और ये जो पर्वत है, ये जो जगह है मतलब जो त्रिकूट पर्वत है वो बहुत सारी घाटियों से अलंकृत है, बहुत सारी घाटियां हैं वहां पर अलंकृत है, इतना अच्छा लगता है, सजी हुई है, इतने सारे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और ये सारे पशु जो हैं वो उसको और भी अच्छे से सुशोभित कर रहे हैं, जंगली जानवरों की सी जंगल की वन की शोभा है। अभी शहर में अगर मनुष्य ना हो, जैसे शहर है उसमें मनुष्य ना हो, जीव हम जैसे मतलब साधारण लोग नहीं घूमे फिरे तो हम क्या बोले, ये शहर कितना सोना सोना है, उसी प्रकार यदि वन में पशु न हो तो वन भी कितना सूना सूना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे पशु जो हैं वो उस वन की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे। आगे कह रहे हैं चित्र द्रोम सरोध्यान, यानी कि द्रोम कहते हैं वृक्षों को, सूरध्यान, सूरध्यान मतलब सूर कहते हैं देवताओं को, तो जो देवताओं के वहां पर भाग हैं और वहां पर कलकंठक विहंगम, कलकंठ कहते हैं वो पक्षी जो बहुत सुंदर, जिनका कंठ बहुत मधुर होता है, बहुत मधुर गाने वाले पक्षी हैं, वहां पर जो बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं अनेक प्रकार के, वहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर बहुत मीठे मीठे स्वर से गाते हैं, मतलब बहुत ही मीठा गाने वाले पक्षी हैं वहां पर। लेकिन वो पक्षी नहीं है जो अच्छा नहीं गाते, जैसे कौवा, कौवे वगैरह नहीं है वहां पर सुंदर सुंदर। ऐसे कहते हैं कौवे जो होते हैं ना उनको सिर्फ गंदगी वाली जगह अच्छी लगती है। इसलिए जो लोग भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहते, इसलिए मतलब भगवान की कथाओं में आते हैं वो केवल महात्मा जन होते हैं, लेकिन जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, भगवान की शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, सुबह सवेरे उठकर श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी ओर उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। बल्कि सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, कुछ और न्यूज़ वगैरह सुनते हैं। तो उनको भी शास्त्र क्या बोलता है, वायसा, उनको भी कौवा बोलते हैं, क्योंकि कौवे को गंदगी की जगह अच्छी लगती है ना। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही सुंदर उद्यान है, बहुत ही सुंदर ऋतुमत नाम का एक उद्यान है, वहां पर तो बड़े ही सुंदर गाने वाले पक्षी आते हैं और बहुत बहुत मीठी स्वर में गाते हैं। अनुवाद, त्रिकूट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। आगे बताते हैं सरित सरो भीरच्छोदय पोलिनाय मणिवालुकय देवस्त्री मच्चनामोद सौरभाम वनिलैर्युत सरित सरो विरच्छोदय पोलिनैर् मणिवालुकै देवस्त्री मच्चनामोद सौरभाम वनिलैर्युत सूरत सरो विरच्छोदय, मतलब सूरत सरो यानी बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारी झीलें हैं, उनमें क्या है, अच्छोद उदय, उदय मतलब जल और अच्छोद मतलब बहुत अच्छा जल है, अच्छा जल मतलब निर्मल जल है, बहुत ही साफ और स्वादिष्ट जल है, रियल स्प्रिंग वाटर है, बहुत ही सुंदर मीठा वहां पर स्वादिष्ट जल। और उसके बाद बताए पोलिनर मणि वालों के, पोलिनर कहते हैं जो पोलिन होता है ना, जो किनारा, मतलब ये तो क्षीर सागर है, उसका जो किनारा है वहां पर मणि वालों के, मतलब जो रेत है ना वहां पर, वो रेत पत्थर की बनी हुई नहीं है, मणियों की रेत है, रत्नों की, बालू के जो कण है वो रत्नों के बने। अब जाहिर सी बात है वो पर्वत जिसके शिखर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए, तो उसमें से जो बालू होगा, जो रेत निकलेगी वो भी सोने की होगी ना, मरकत मणि का रेत है वहां पर, मणि पोलिनर मणि वालों का, मणियों का बालू है। अब जब मणियों के पत्थर आपस में टकराते होंगे तो टकराने के बाद जो फूट फूट कर बालू गिरती होगी वो भी मणियों की होती होगी। और वहां पर क्या करती है, देवस्त्री मज्जनामोदय, जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो वहां पर मज्जन मतलब जल में स्नान करती हैं, और आमोद कहते हैं उनके शरीर में बहुत सुगंध होती है, क्योंकि देवताओं की स्त्रियों के शरीर में स्वाभाविक सुगंध होती है, उसके अतिरिक्त वो केसर इत्यादि लगाकर जब स्नान करती हैं तो क्या होता है, सौरभ यानी बहुत ही सुगंधित हो जाता है, क्या जो जल है वो पहले से इतना मीठा है, इतना अच्छा स्वादिष्ट जल है, तो वो सुगंधित भी हो जाता है। और अनिलय यानी जो वहां की जो वायु है वो वायु भी सुगंधित हो जाती है। युत यानी त्रिकुट पर्वत में जो जगह है, जो जल है नदियों और झीलों में, वो एक तो पहले से इतना स्वादिष्ट है, और जब देवताओं की स्त्रियां उनमें स्नान करती हैं तो और भी ज्यादा सुगंधित हो जाता है, और भी ज्यादा मधुर हो जाता है। वास्तव में ये देवताओं की स्त्रियों का शरीर ऐसा हमारी तरह नहीं, हमारे यहाँ पर क्या होता है, जीव जिस भी पानी में स्नान करते हैं वो पानी को और भी गंदा कर देते हैं, मगर ये देवताओं की स्त्रियां हैं, उनका शरीर इतना स्वच्छ होता है कि जब वो जिस झील में या नदी में स्नान करती हैं तो वो और भी ज्यादा सुगंधित और स्वच्छ हो जाती है। अनुवाद देखिए, त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं जिनके तट बालू के कणों से सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उनमें स्नान करती हैं तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतः अपने शरीरों को की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों के शारीरिक सुगंध से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकूट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित होता है। क्योंकि उच्च लोकों की स्त्रियों के शरीर अत्यंत ही सुंदर होते हैं, अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि वैकुंठ की स्त्रियों या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर होते होंगे। प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार जीव की उन्नति होती है, जितना जीव शुद्ध होता जाता है, क्योंकि उच्च लोक में है तो वो शुद्ध हो गए तो उनके शरीर भी हमारी तरह मलिन नहीं होते हैं, शुद्ध होते हैं। और उससे भी ज्यादा जो हाईएस्ट स्टेज पे होते हैं, यानी जो गोलोक वृंदावन धाम में या भगवान की जो सहचरी गोपियां जो भगवान के साथ रहती हैं, जिनका पूरा का पूरा इतनी शुद्ध हो गई हैं कि तन मन से भगवान को समर्पित हो गए, तो वो तो उनके शरीर की तो क्या बात कहनी। तो आप सुखदेव गोस्वामी उस पर्वत का वर्णन करते करते अब उस स्थान की ओर आ रहे हैं जहां पर ये घटना घटी थी। कौन सी? जहां पर गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा था। तो उस जगह के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नामा आक्रीडं सुरयोषितां। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानं ऋतुमन्नामा आक्रीडं सुरयोषितां। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मना, यानी कि वहां पर भगवान वरुण देव का एक उद्यान है। तस्य द्रोण जो घाटी है त्रिकूट पर्वत पर, वहां पर एक उद्यान है। उद्यान कहते हैं एक बाग को, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं, वो जिसमें विभिन्न प्रकार के फल फूल होते हैं ना। तो एक वरुण, अभी वरुण देव को यहाँ पर कहा गया भगवतो वरुणस्य महात्मना। एक तो उनको भगवान कहा गया, भगवान वरुण देव, और दूसरा उनको महात्मन कहा गया। तो भगवान यहाँ पर, भगवान का क्या मतलब होता है? ऐश्वर्य, भग। तो एक जीव का भग क्या होता है कि वो कृष्ण के प्रति प्रेम कितना विकसित कर देता है। वास्तव में वरुण देव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए उनको महात्मना कहा गया है। महात्मन का मतलब होता है कि जिसका मन भगवान में पूरी तरह से लगा हुआ हो। तो ऐसे वरुण देव जिसका पूरा का पूरा मन भगवान में लगा हुआ है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका एक उद्यान है वहां पर। और उद्यान ऋतुमन नाम, उनका उसका नाम क्या है? ऋतुमान। ऋतुमान नाम से वो विख्यात है। और वहां पर क्या होता है? आक्रीडम सुरयोषितम, वो स्थान है वहाँ। आक्रीडम मतलब वहां पर आके खेल को खेलते हैं, वो एक प्ले ग्राउंड है। किसका? सुरयोषितम, देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो वहां पर आके आक्रीड कर मतलब क्रीड़ा करती हैं। अभी बता रहे हैं कि वृक्ष कैसे वहां पर, वे कहते हैं सर्वतोलंकृतम सर्वतोलंकृतम दिव्यै नित्य पुष्प फल त्रुमय मंदारय पारिजातश्च पाटलाशोक चंपक। सर्वतोलंकृतम दिव्य, यानी कि वहां पर उसका ऋतुनाम नाम है ना ऋतुमान, तो इसका मतलब है सारी ऋतुओं की सारे फल 12 महीने वहां पर रहते हैं। सर्वतोलंकृतम दिव्य नित्य पुष्प फल द्रुमय, वो जो वृक्ष चाहे वो पुष्प के हो या फलों के हो वो सदैव भरे हुए रहते हैं, अलंकृत रहते हैं, सजे हुए रहते हैं। और पहले पुष्पों के वृक्षों के विषय में बता रहे हैं, कौन कौन से नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से पुष्प के वृक्ष हैं। मंदार है, पारिजात वृक्ष हैं, पाटला शोक अशोक वृक्ष हैं, चंपक, ये सब बहुत ही सुगंधित पुष्प हैं जो वहां पर होते हैं। और उसके बाद ये सारे फलों के नाम बता रहे हैं कि वहां पर कितने सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष भी हैं। चूते पियालय पंसै आम्रे रामरात कैरपी क्रमु कै नारी कैलाश खर्जूरे बीज पूरी कै चूते पियालय पंसै। चूते कहते हैं आम, जो जैसे आम की एक किस्म होती है ना जिसको यहाँ पर शायद चूसने वाला कुछ बोलते हैं ऐसा चूसिया, उससे चूते पियालय। और इसके अलावा पंसे, पंसे कहते हैं जैक फ्रूट को, जो खट्टल होते हैं ना उसको बोलते हैं। आम्रत वो उसको आम को ही बोलते हैं, उसको आम्रत फल होते हैं। और कैरपी, इसके अलावा क्रमो कैर, आम्रे आम को बोलते हैं और आम्रत कै जो है ना वो एक खट्टा फल होता है उसको बोलते हैं। अभी क्रमो कै बोलते हैं कर्मोद फल को, और नारी कैल मतलब नारियल के फल को, खजूर है यानी खजूर के फल को, बीज पूरी के यानी कि पूरा बीजों से भरा हुआ होता है। कौन सा फल होता है जिसमें खाली बीज ही बीज होते हैं और हम लोग बीज ही खा रहे होते हैं? हाँ, अनार का जो बीज पूरी के यानी पूरा बीजों से भरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वृक्ष है उनके अंदर जो फल है वो ऐसे हमारे तरह छोटे छोटे फल या फिर कम रस वाले ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष के अंदर जो फल है वो बहुत भारी भारी और बड़े बड़े फल होते हैं और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आगे बता रहे हैं मधु कै शालतालय तमालय रसनार्चुन अरिष्टो डुम्बर अप्लक्षय वटय किंशुक चंदन मधु कै शालतालयश्च तमालय रसनार्जुनय अरिष्टो डुम्बर अप्लक्षय वटय किंशुक चंदनय। ये सब फ्रूट्स के नाम है जो कि बहुत ही जो देवता उच्च लोकों में, अभी देखो जैसे हमें बताया जाता है कि स्थावर लक्ष विशंति 20 लाख प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स हो सकता है कि हमारे इस पृथ्वी लोक में नहीं हो, लेकिन यहाँ पर नाम बता रहे शुकदेव गोस्वामी मधु कै अर्थात मधुक फलों से, शालतालय यानी ताड़ फलों से, च तमालय यानी तमाल वृक्ष होते हैं, असन यानी असन वृक्ष होते हैं, अर्जुन वृक्ष होते हैं, अर्जुन नाम का वृक्ष। याद है जब भगवान श्री कृष्ण दामोदर लीला करते हैं तभी भी उनके घर के आंगन में जो दो वृक्ष होते थे उसको भी अर्जुन वृक्ष यमला अर्जुन वृक्ष कहते हैं, और कहा जाता है इसकी जो छाल है वो कैंसर के रोग के लिए बहुत अच्छी होती, तो अर्जुन के वृक्ष थे वहां पर। और अरिष्ट यानी अरिष्ट फलों के अडम्बर यानी अडम्बर का एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और पलक्ष यानी पलक्ष वृक्ष से वटे वट कहते हैं भरगत का जो वृक्ष होता है ना पिप्पल का उसको, और किंशुक यानी गंध विहीन लाल फूलों से, और चंदन अर्थात चंदन के भी वृक्ष थे वहां पर। आगे भी बता रहे हैं, पिछु मर्दय को विधारय सरलय सुरदारी भी, द्राक्षय क्षुरम भाजंबू भी बदर्यक्षा भयामलय, पिछु मर्दय को विधारय सरलय सुरदारु भी, द्राक्षय क्षुरम भाजंबू भी बदर्यक्षा भयामलय। अभी यहाँ पर फूल और फलों का बता रहे, पिछु मर्दे यानी बहुत ही सुंदर फूल है, और कोविदारे जो है वो बहुत ही सुंदर फल है, सरल है यानी सरल के वृक्ष है, सूर्यधारु भी, सूर्यधारु सूर्य मतलब देवताओं को बहुत ही प्रसन्न करने वाले वृक्ष है, और द्राक्षा, द्राक्ष कहते हैं अंगूर को, ग्रेप्स को, अक्षु यानी गन्ना, रंभा यानी केला, और जम्बू भी अर्थात जामुन, ये सब बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट फल है। वहाँ पर बदरी कहते हैं बेर के फल को, अक्ष फल होते हैं, अभय फल भी वहाँ पर होते हैं, आमलय आमलकी या आमलों के फल, यानी कि ये सारे बहुत ही सुंदर फलों और फूलों से पूरा ये जो ऋतुमत नाम का उद्यान है, ये जो बाग है जो कि वरुण देव के संरक्षण में है, वो पूरा सजा हुआ सुशोभित है। अनुवाद देखिए, त्रिकूट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नाम का उद्यान था, यह उद्यान महान भक्त वरुण देव का था, और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था, क्रीड़ा स्थल मतलब वहां पर खेलने की जगह थी, यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे, इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्रविशेष, चूत, प्याल, पनस, आम, आम्रतक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार प्रमुख थे। वहां पर मधुक, तार, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, अडुम्बर, प्लक्ष और बरगद, किंशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिछु मर्द, कोविदार, सरल, सूरदारु, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बदरी और अक्ष, अभय तथा आमलकी फल भी थे। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, बिल्वय कपिथय जम्भीरय वृतो बल्लात कादि भी, तस्मिन् सरह सुविपुलम लसत कांचन पंकजम। बिल्वय कपिथय जम्भीरय वृतो बल्लात कादि भी, तस्मिन् सरह सुविपुलम लसत कांचन पंकजम। तो शुकदेव गोस्वामी अब उस पर्वत के ऊपर जो गुफाएं हैं और उनके अंदर जो वन है उसका वर्णन करते करते अब उस जगह पर आ गए हैं, उस सरोवर की बात बता रहे हैं जहां पर कि भगवान स्वयं आएंगे और गजराज की रक्षा करेंगे। वे कहते हैं बिल्वय अर्थात वहां पर बिल्व के वृक्ष हैं, कपित है अर्थात कपित वृक्ष हैं, जम्बीर है अर्थात जम्बीर वृक्ष भी हैं, वृत ये पूरा घिरा हुआ है, बहुत सारे वृक्षों से घिरा हुआ है, और बल्लातक आदि भी, बल्लातक इत्यादि बहुत सारे वृक्ष हैं, तस्मिन माना वो इतना सुंदर जो उद्यान है वरुण देव का, उसमें सरह मतलब झील है, सुविप्लवम अत्यंत ही विशाल, एक बहुत ही विशाल सरोवर है, और उस सरोवर की विशालता पहली उसकी विशेषता बता रहे हैं, लसत कांचन पंकजम, उसके अंदर कांचन पंकजम, कांचन कहते हैं सोने को और पंकज कहते हैं फ्लावर्स, जो लोटस फ्लावर होता है ना कमल का, अर्थात सुनहरी गोल्डन लोटस है, उसके अंदर सुनहरी कमल है, उस झील के अंदर जो बहुत सुंदर एक झील है, इन पूरे वृक्षों से घिरी हुई एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल सुविपुलम बहुत ही सुंदर एक विशाल झील है, सरोवर है, और उसके अंदर पूरे सुनहरी रंग के लोटस फ्लावर है, कमल है। तो कल देखेंगे उनके विषय में और सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं। वास्तव में भक्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम महापुराण के विषय में कहा जाता है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो त्याज्य है। ये निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, ये ऐसा फल है जिसके अंदर न गुठली है और न ही छिलका है। कुछ भी ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि ये पढ़ने का क्या फायदा, अभी वृक्षों के बारे में हमें बता रहे हैं, घाटियों के बारे में बता रहे हैं, झीलों के विषय, ये इसका एक एक शब्द जो है वो साक्षात स्वयं भगवान है। एक एक वर्ड को पढ़ने से हम, क्योंकि ये वो स्थान की महिमा हम पढ़ रहे हैं जहाँ पर भगवान आ रहे हैं, तो भगवान स्वयं हमें बताते हैं कि इनके विषय में पढ़ने से हमारे हृदय के समस्त अपराध समाप्त हो जाते हैं, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का एक एक शब्द यदि हमें श्रवण करने को वो शब्द मिल रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। तो कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।